Shabbat shalom. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Thank you. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna, हरे कृष्णा। तो आप सबको यहाँ पर श्री जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य पर श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। पिछले कई दिनों से हर शाम को यहाँ पर कृष्ण लीला का वर्णन चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध गोवर्धन लीला की चर्चा हो रही है। कल तक चर्चा ये हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय ब्रजवासी भक्तों को इंद्रदेव के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया था आसानी से, जैसे एक बच्चा एक खिलौने के उठाता है या एक फूल को जमीन से उखाड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बड़े आसानी से गोवर्धन पर्वत को धारण किया और अपने बाएं हाथ के छोटी छोटी उंगली के ऊपर लगातार 7 दिन और 7 रात गोवर्धन पर्वत को भगवान ने धारण किया। एक ही स्थान पर भगवान श्री कृष्ण रहे, वहां से हिले नहीं। और ये जो एक सप्ताह गुजर गया ब्रजवासियों के लिए, उनको ऐसे प्रतीत हुआ कि बहुत कम समय बीत चुका है, परंतु इंद्रदेव के लिए, जिन्होंने कि प्रलय काल के बादल भेजे थे जिसके कारण ब्रज भूमि में भीषण वर्षा हुई थी, बहुत तेज ठंडी हवा तूफान वहां पे चल रहे थे, बर्फ के टुकड़े पड़ रहे थे, बारिश खंभों के रूप में गिर रही थी, इंद्रदेव के लिए इस समय बहुत लंबा जा रहा था। ब्रजवासी गण को बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के नीचे कोई कष्ट नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति के द्वारा ब्रजवासियों को पूरी तरह से एक सुविधाजनक परिस्थिति मिली रहने के लिए। वहां पे तापमान बिल्कुल ठीक था, बारिश अंदर नहीं आ रहा था, बल्कि अंदर बहुत ही रमणीय वातावरण था। और सबसे बड़े आनंद का कारण ये था कि सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन निरंतर 7 दिन और 7 रात करते रहे। तो ये था ब्रजवासियों का सौभाग्य। तो इस प्रकार जब समय बीत गया, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, सारे ब्रजवासीगण जो कि उनसे उम्र में बड़े थे, वृद्ध गोपगण, वो थोड़े सोचने लगे कि अरे श्री कृष्ण शायद थक रहे होंगे। तो वो अपनी छड़ी लेकर गोवर्धन पर्वत को स्पर्श कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि हम भी अपने लाठी से अपने छड़ी से गोवर्धन पर्वत को ऊपर रखने में मदद करेंगे। लेकिन थोड़े गोपगणों ने अगर छड़ी लगाई तो क्या गोवर्धन पर्वत उसकी वजह से ऊपर रह सकता था? गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण के देवी शक्ति के कारण मात्र ऊपर था। तो खैर, जिस प्रकार से वो प्रेम अंक वास्तविक प्रेम दिखाकर भगवान श्री कृष्ण को अपना बच्चा समझकर सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे श्री कृष्ण को, जबकि वास्तव में श्री कृष्ण ही थे जो उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, तब श्री कृष्ण के ब्राह्मण मित्र मधुमंगल ने कहा कि हे वृद्ध गोपगण, आप क्यों ऐसे छड़ी ऊपर लेके खड़े हैं? गोवर्धन पर्वत को खुजाने से ज्यादा आपका कोई काम नहीं होगा इसे। ये मत समझिए कि श्री कृष्ण थक गए हैं, श्री कृष्ण नहीं थके हैं, श्री कृष्ण तो जैसे थे वैसे ही हैं, बड़े आराम से खड़े हैं। उधर माता यशोदा आई श्री कृष्ण के पास, जब श्री कृष्ण हल्के मुस्कान लेकर अपने त्रिभंग रूप में खड़े थे गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए, माता यशोदा को चिंता हुई कि तुम बहुत थक गए होगे, अब थोड़ा मक्खन खा लो और कुछ मैं पका के लाई हूं वो खा लो। तो इस प्रकार से अलग अलग जो भक्त थे भगवान के, वो अलग अलग भावना से श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। उधर थोड़े वृद्ध गोपियां अपने पुत्रियों को साथ में लेकर खड़े हो गए, तो जो गोपगण हैं वो थोड़े ब्राह्मणों के साथ में रह गए। तरुण जो गोपियां हैं वो जाके भी गोपियों के अन्य गोपियों के साथ में खड़ी हो गई। गौवन भी इधर उधर आराम से बैठे हुए थे, कोई इधर उधर घूम रहे थे, किसी को पता नहीं चला कि 7 दिन कैसे बीत गए। आनंद का समय था, एक 7 दिन का उत्सव हो गया था जिसमें ब्रजवासियों को भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगा, नींद नहीं आई, थकावट नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कष्ट या व्यथा नहीं हुई उनको। और जब फिर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि चलो अब 7 दिन तो हो रहे हैं और इंद्रदेव आए क्या, तो देखा तो इंद्रदेव आ चुके हैं। इंद्रदेव इस तरह आकाश पर से आए अपने देवलोक से, बड़े क्रोधित होकर अपने ऐरावत हाथी के ऊपर सवार होकर आ रहे थे और इतने तेज गति से, इतने क्रोध से आ रहे थे कि उनके आने से एक बहुत भयानक आवाज आ रही थी। जैसे देखते हैं कभी कभी रास्ते में कोई मोटरसाइकिल या बड़ी गाड़ी लेकर जाता है तो कितना आवाज आता है, तो इंद्रदेव के हाथी का आवाज नहीं था, इंद्र के क्रोध का आवाज था। इतने क्रोधित होकर इंद्र आ रहे थे यहाँ, और फिर यहाँ आके उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हो गया, ये गोवर्धन पर्वत इतने ऊंचे कैसे, ऊंचा कैसे हो गया, और गोवर्धन पर्वत का शिखर जो है इतना ऊंचा हो गया कि सुमेरु पर्वत और अन्य जो पर्वत हैं वो सब लज्जित हो गए हैं, और यहाँ पे बादलों को छू रहे हैं, छू रहा है ये गोवर्धन पर्वत, बल्कि ये बादल गोवर्धन पर्वत के को ऐसे घेर चुका है कि ऐसे लग रहा है कि गोवर्धन को मोतियों की माला किसी ने पहना दी है। और ये क्या, गोवर्धन के ऊपर से धूल का एक कण, मिट्टी का एक कण भी नीचे नहीं आया, और इधर ब्रजमंडल में, ब्रज भूमि में कहीं भी कोई बाढ़ दिखाई नहीं दे रही है। उधर गोवर्धन पर्वत के ऊपर ये सारे पशु हैं, पक्षियां हैं, वो सब बड़े आराम से ऊपर नीचे जा रहे हैं, खेल रहे हैं, एक पत्ते को भी कुछ नहीं हुआ है गोवर्धन पर्वत के ऊपर, और मैं यहाँ पूरी ताकत लगाकर मेरे सामने तक बादलों को मैंने बुलाया है, प्रलय काल की वर्षा चल रही है, ऐसा भयंकर तूफान चल रहा है और यहाँ एक पत्ते को भी नुकसान नहीं हुआ, और इसके नीचे क्या हो रहा है, अरे यहाँ तो बस आनंद ही आनंद है, जंगल में मंगल है, यहाँ तो वन सुंदर, हरियाली है, रमणीय वातावरण है, यहाँ पे सारे ब्रजवासी इतना आराम से रह रहे हैं, मानो कि कुछ बाहर तूफान नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। और ये क्या, श्री कृष्ण धारण करके बैठे हैं, ये छोटा बच्चा इसने छोटे उंगली के ऊपर इस विशाल गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। तब इंद्रदेव के होश ठिकाने आ गए। तो शुक्रदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि इंद्रदेव ने जब देखा भगवान कृष्ण की योग शक्ति का प्रदर्शन, तो उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत गलती कर ली, और उनको थोड़ा सा भय होने लगा कि यार मुझे श्री कृष्ण के हाथों में दंड स्वीकार करना होगा। तो शुक्रदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्ण योगानुभावम मिशम इंद्रो की विस्मितः निस्तंभो भ्रष्ट संकल्पः स्वामेघान संगवारयत् कृष्ण योग अनुभावम्। तो कृष्ण के योग शक्ति के प्रभाव से अनुभाव से निशम्य जब इंद्र देवी ने देखा इंद्र अति विस्मित बड़े विस्मित हो गए चकाचौर हो गए कि ये क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं तो देवराज इंद्र हूं और मेरी शक्ति का सामना कम से कम मर्त्य लोक में पृथ्वी लोक में तो कोई नहीं कर सकता और इस छोटे से बच्चे ने मेरे योग शक्ति का मेरी शक्ति का सामना तो किया लेकिन किस प्रकार से किया इस पर्वत को उठा कर किया। निस्तंभ स्तंभ मतलब घमन निस्तंभ मतलब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को ऊपर सात दिन धारण करके इंद्रदेव के घमन को चूर कर दिया निस्तंभ बना दिया। इंद्रदेव का घमन खत्म हो गया मान भंग हो गया भ्रष्ट संकल्प इंद्रदेव की जो दृढ़ इच्छा थी दृढ़ संकल्प था कि मैं ब्रजवासियों को सबक सिखाऊंगा मेरे लिए ये लोग यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ बंद करके इन्होंने गोवर्धन की पूजा की उस सामग्री से तो इनको मैं दंड देने जाऊंगा ये संकल्प लेकर इंद्र ने सामर्थक बादलों का आह्वान किया था परंतु अब भ्रष्ट संकल्प वो संकल्प नष्ट हो गया। स्वामेघान संगवारयत् फिर इंद्रदेव ने ये ठीक समझा कि इन सामर्थक बादलों को वापस बुला दें तो बादलों आ जाओगे कुछ होने वाला नहीं है उल्टा मैं अभी बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगा अभी तो मेरे लिए कष्ट आने वाला है तो अभी आ जाओ फिर से आ जाओ। तो तुरंत सामर्थक बादल जो है वहां से पीछे आ गए। वहां बाहर क्या चल रहा है ब्रजवासियों को कोई परवाह नहीं भले अनंत काल तक चलता रहे ऐसे सृष्टि के अंत तक भी ऐसे इंद्रदेव वर्षा करते रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था वो तो श्री कृष्ण के आश्रम में थे उनको क्या डर था। हमें सोचना चाहिए जानना चाहिए कि हमारे जीवन में भी जब कष्ट आते हैं ऐसे तूफान आते हैं जैसे इंद्र ने ब्रजवासियों के लिए भेजा तो हमें भी श्री कृष्ण का आश्रय उसी तरह लेना चाहिए जैसे कि ब्रजवासियों ने लिया। रक्षिष्यति इति विश्वासो ये शरणागति का एक लक्षण है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये दृढ़ विश्वास होना। तो ऐसे विश्वास से जब हम श्री कृष्ण के शरण में जाएंगे तो संसार के जो दुख के कष्ट के तूफान आते हैं हमारे जीवन में जो हमारे पूर्व कर्म रूपी इंद्र भेज रहे हैं तो हम शांत रहेंगे हमें कष्ट नहीं होगा इन समस्याओं का समाधान हम कर पाएंगे उनका सामना हम कर पाएंगे। साधारणतः देखा जाता है कि जब लोगों के जीवन में कष्ट आता है तो वो रोने लगते हैं शिकायत करने लगते हैं इधर उधर जाते हैं ये क्या हो रहा है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है बहुत शोक करते हैं जगह जगह जाके शिकायत करते हैं कभी कभी भगवान के पास भी आते हैं भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मैं तो आपका इतना अच्छा सेवक हूं मैं तो इतना पुण्यदान व्यक्ति हूं इतने सारे दुष्ट लोग हैं लेकिन मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया। कभी कभी लोगों को भगवान के अंदर श्रद्धा भी कम हो जाती है कभी टूट भी जाती है वो सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था। कहने का मतलब है कि वो सोचते हैं कि भगवान वो भगवान से अच्छा जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है। जो भी हमारे जीवन में परिस्थिति आती है वो भगवान भेजते हैं हमारी भलाई के लिए भेजते हैं। तत्तेन कंपान सुसमीक्षमान भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वा वपुर्धेर हृदघन नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। जब ब्रह्मा जी भी इसी प्रकार से विस्मित हो गए थे भ्रमित हो गए थे श्री कृष्ण को देखकर उनके ऐश्वर्य को उनके वैभव को समझ नहीं पाए थे। उन्होंने ग्वाल बालों को और गाय के बछड़ों को चोरी कर लिया था और एक गुफे में छुपा दिया था। सोचा था कि अब देखते हैं कि बच्चा क्या करेगा। तब उस समय भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत योग ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया था और ब्रह्मा जी भी उस समय आश्चर्यचकित हो गए थे, विस्मित हो गए थे, निर्वचन हो गए थे। तो जब ब्रह्मा जी की बुद्धि फिर से ठीक हो गई तो उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण की। उनमें से भी एक श्लोक उन्होंने कहा, इस श्लोक का अर्थ है कि हे कृष्ण, आप ही स्वयं भगवान हैं और जब मेरे जीवन में जब ऐसे कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में कष्ट आता है और वो समझ लेता है कि ये सब कष्ट जो हैं मेरे पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार मुझे प्राप्त हो रहे हैं, कृतम विपाकम, विपाकम मतलब ऐसे कोई पाप हमने पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए होंगे जिसके वजह से हमें ये जीवन में कष्ट अभी आ रहे हैं, तो इन कष्टों को बड़े सहनशीलता से उसको सहन करते हैं, शिकायत नहीं करते, किसी को दोष नहीं देते कि इसके वजह से हुआ उसके वजह से हुआ, नहीं, ऐसे धीरज रखते हुए भगवान की कृपा की अपेक्षा करते हैं। अपने हृदय से, अपने वाणी से, अपने कार्यों से वो भगवान को नमस्कार करते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान श्री कृष्ण की अंदर श्रद्धा रखते हुए सुख दुख में स्थिर रहता है, भगवान में श्रद्धा कभी कम नहीं होने देता, ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम में जाने के लिए अधिकारी व्यक्ति है। तो ऐसे दुख के समय हमें इन ब्रजवासियों का स्मरण करना चाहिए। इसलिए तो भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं, हम सबको अनेक चीजें सिखलाते हैं। हमारे जीवन में तो छोटे मोटे तूफान आते हैं, ब्रजवासियों के जीवन में देखो कितने तूफान, कितना बड़ा तूफान। और रोज कोई ना कोई असुर आता था वृंदावन में और श्री कृष्ण इनकी हत्या करते थे सारे समस्त असुरों का। कितना तनाव ब्रजवासियों को था, लेकिन इस तनाव इस कष्ट की वजह से ब्रजवासियों की श्रद्धा कृष्ण में कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। जितने ज्यादा कष्ट आते थे जीवन में ब्रजवासियों के, उतनी ही ज्यादा तीव्रता से ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते थे। तो ये एक सबक है, ये उपदेश है हम सबके लिए। अगली बार हमारे जीवन में जब तूफान आएगा हमें याद रखना चाहिए कि इंद्र ने कितना बड़ा तूफान ब्रजवासियों को भेजा। जब हमारे जीवन में तूफान आता है तो हम जाके लोगों से कहते हैं, अरे देखो तो सही कितना बड़ा तूफान है हमारे जीवन में, है कि नहीं? हम दूसरों को जाके कहते हैं देखो कितना कष्ट हुआ, ये है वो है, ये तो स्वाभाविक है। परंतु जब हम कृष्ण के पास जाएंगे ये शिकायत लेकर नहीं जाना चाहिए कि हे कृष्ण देखो मेरे जीवन में कितनी बड़ी तूफान आ गई है, ये नहीं बोलना चाहिए कृष्ण को पास, कृष्ण के पास जाकर, बल्कि तूफान के पास जाना चाहिए। अरे तूफान देखो मैं श्री कृष्ण के आश्रय में हूँ, देखो मेरे पास कितने बड़े कृष्ण है, तुम तो कृष्ण के सामने कुछ नहीं हो। तो इसके बजाय कि हम कृष्ण के पास जाकर कहें कि देखो मेरा तूफान कितना बड़ा है, हमें तूफान के पास जाकर कहना चाहिए कि देखो मेरे कृष्ण कितने बड़े हैं। इस तरह से किसी भी परिस्थिति का सामना करने की बुद्धि और शक्ति हमको मिल जाए। तो इंद्रदेव बाहर वहां बस आग बबूले होते जा रहे हैं, अंदर ब्रजवासी गण बड़े आनंद से अपना समय बिता रहे हैं। जो शांत रस में स्थित ब्रजवासी हैं जैसे ब्राह्मण आदि, वो आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे श्री कृष्ण की ओर। माधुरी रस में स्थित होने वाली गोपियां बड़े प्रेम के दृष्टि से भगवान को देखती जा रही थी। माता यशोदा बीच बीच में चिंतित होती, कभी जाकर श्री कृष्ण से कहती कुछ माखन खा लो। उधर उनके जो मित्र हैं सुबल आदि, वो श्री कृष्ण का हौसला बढ़ाने को जाते, उत्साह दिलाते, प्रेरणा देते श्री कृष्ण को कि कृष्ण बहुत अच्छा रत्नानी बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा धारण किया है तुमने गोवर्धन पर्वत को। तो जितने भी ब्रजवासी थे, जैसे जैसे उनका संबंध था श्री कृष्ण के प्रति, उस प्रकार वो जाके श्री कृष्ण से बात करते थे या उनके प्रति आदर या भक्ति की भावना रखते थे। फिर अंततः जब इंद्रदेव ने वर्षा और ये तूफान सब रोक दिए, तो श्री कृष्ण ने देखा अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। फिर क्या हो गया? खम व्यभ्रम उतादित्यम वातवर्षम च दारूणाम निशम्यो परतम गोपान गोवर्धन धार गोवर्धन धरो प्रदीप। कि जब भगवान ने देखा कि अब ये वर्षा वातवर्षम च दारूणाम, ये वात मतलब पवन वर्षा, ये सब बंद हो चुका है, और उदित आदित्यम, आदित्य मतलब सूर्य, अभी सूर्य उदित हो गया है, सूर्य दिखाई दे रहा है, सूरज की रोशनी, सूरज की उष्णता अब जब फैल रही है सब जगह, तो निशम्य उपरतम गोपान, तो भगवान ने जब ये देखा तो फिर गोवर्धनधारी श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, क्या कहा? निर्यात त्यजत त्रासम गोपाह सस्त्री धनार्बकाह उपारतम वात वर्षम व्यूद प्रायास निम्नगाह। निर्यात त्यजत त्रासम, निर्यात मतलब अब हे गोपगण सब बाहर चलो, गोवर्धन के नीचे से बाहर आ जाओ। त्यजत त्रासम, अब अपने भय को त्यागो, देखो उपरताम वात वर्षम, इस सारे जो बरसात है, ये हवा है, ये तूफान है, सब खत्म हो गया है, और नदियों में जो बाढ़ है वो भी सब कम हो चुका है। तो अभी गोपाह सस्त्री धनार्बकाः, हे गोपगण अपने महिलाओं को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, गवों को भी लेकर अब चलो निकलो गोवर्धन के नीचे से बाहर आ जाओ, अब सारी समस्या समाप्त हो गई है। उसके बाद सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने गवों को इकट्ठा किया, लाखों की संख्या में गौ वहां थे, सारे गौ आगे चले, ग्वाल बालों ने अपने अपने गौओं को बुलाया नाम से, सारे गैया सीधे से बाहर गई, और गौओं को भी बड़ा आनंद आया था। सात दिन क्या आनंद आया था गायों को, वो भी तो श्री कृष्ण का दर्शन करते रहे थे। सात दिन लगातार गायों ने अपने जो पूर्व जो भी प्रवृत्तियां हैं, जैसे गाय क्या करते हैं, इधर उधर चलते हैं, घास खाते हैं, तो इनकी इस पूर्व प्रवृत्ति को त्याग कर वो केवल श्री कृष्ण को देखे जा रहे थे सात दिन। अब जब बाहर निकलने का मौका आया तो जैसे ही उनके ग्वाल बालों ने कहा कि बाहर निकलो, वो गए, और जैसे जा रहे थे घूम के देखा कि श्री कृष्ण तो अंदर ही है, तो फिर से घूम कर सीधे कृष्ण के पास आए, श्री कृष्ण को घेर लिया। तो श्री कृष्ण ने केवल अपने आंखों के इशारों से उनको हंसते हसमुख चेहरे से बताया कि नहीं कोई चिंता नहीं, जाओ जाओ। तो सारे गाय लाखों की संख्या में जो थे सब बाहर गए। भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रेम करते थे, केवल इशारे मात्र से, कभी बांसुरी से, कभी अपनी वाणी से भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप करते थे। भगवान श्री कृष्ण भगवान है तो सबके भाषाओं को जानते हैं, वृंदावन के पशुओं के साथ भी उनका वार्तालाप होता रहता है उनकी भाषाओं में, पशुओं की भाषाओं में, तो गायों की भाषा भी वो जानते हैं। तो गाय भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिपात स्नेह भरे दृष्टिपात से संतुष्ट होकर पुनः गोवर्धन पर्वत के नीचे से बाहर निकल आए। और फिर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु हो पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयाम आशरीरया। भगवान अपि, फिर भगवान ने, उसके बाद श्री कृष्ण ने तम शैल मतलब उस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को स्वस्थान पूर्ववत प्रभु, तो अपने स्थान में जहाँ गोवर्धन पर्वत पहले स्थित था जमीन के ऊपर, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को रख लिया। कैसे रख लिया? बड़े आराम से, बस यूं ही रख दिया, उंगली में से बस नीचे कर, जैसे हल्का कोई फूल से बना हुआ कोई गेंद है। जैसे भी यहाँ देखिए फूल कितने सुंदर लगाए हुए हैं, मंदिर सजाया हुआ है। अभी एक फूल लीजिए, एक फूल को आपको नीचे रखना है तो यू आराम से आप कर देंगे, जमीन पर गिरा सकते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ऐसे गोवर्धन को धारण किए हुए थे, बड़े आसानी से बस रख दिया नीचे, कोई कष्ट नहीं हुआ। जब आप रेलगाड़ी में जाते हैं, कभी कभी कूली की सहायता भी लेते होंगे, कूली बहुत सारा सामान लेकर जाता है, कूली को सामान उतारते समय कष्ट होता है कि नहीं होता है? इतनी सावधानी वो कहते हैं हाथ दो हाथ दो, हाथ देते हैं फिर धीरे धीरे से उतारते हैं, और वो तो केवल 20-30-40 किलो का सामान है, उसको उतारने में कितना कष्ट होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इतना विशाल गोवर्धन पर्वत बड़े आसानी से छोटे से फूल के समान स्वस्थान अपने स्थान में पुनः रख दिया, और फिर वो आगे स्थान से बाहर निकल गए। उस समय सारे ब्रजवासी अभी बाहर निकल चुके थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तम प्रेम वेगान निभृता ब्रजौ कसो यथा तमीयु परिरंभ आज भी। ब्रजवासी ब्रज ओकसो मतलब ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी जो है निभृता, उनके हृदय में वो भर गया था। क्या भर गया था? प्रेम वेगान, प्रेम का वेग श्री कृष्ण के प्रति। अब श्री कृष्ण ने उनके लिए ऐसे कार्य किया था, उनकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, तो केवल इस बात को सोचकर ही उनके हृदय में कृष्ण के प्रति ऐसा तीव्र जो भक्ति की भावना जागृत हो गई कि वह सीधे चले आए कृष्ण के पास। यथा समीय परिरंभ आदि, और सब लोग समीय सामने आए और अपने अपने संबंध के अनुसार कोई श्री कृष्ण को आलिंगन करने लगा, कोई श्री कृष्ण के चरण दबाने लगे। जो उनसे वरिष्ठ थे, जो बुजुर्ग गोपगण थे, वो आए श्री कृष्ण के सर को सूंघने लगे। वाह वाह बच्चा, बहुत अच्छा किया तुमने। किसी ने जाकर उनके गाल को लिंग किया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। किसी ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव आयुष्मान भव। किसी ने जाके और उसे आलिंगन किया, कहे कृष्ण तुमने बहुत बढ़िया काम किया, वाह वाह वाह। उधर जो उनके ग्वाल बाल मित्र थे, उन्होंने भी जाके श्री कृष्ण को आलिंगन किया, थोड़े ग्वाल बाल में जाके थोड़ा मालिश किया हाथ को, कृष्ण अभी तो कुछ दर्द कर रहा होगा, हम थोड़ा मालिश कर देते हैं। इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने, छोटे छोटे जो बच्चे थे उन्होंने जाके श्री कृष्ण को प्रणाम किया। ये वैदिक सभ्यता है, जो हमसे बड़े होते हैं उनका हम सम्मान करते हैं, जो हम उम्र के होते हैं उनसे एक मैत्री का संबंध रखते हैं, और जो हमसे उम्र कम होते हैं उनको हम प्रेम देते हैं। तो इस प्रकार से संबंध समाज में चलेगा तो सारे समाज में अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी। आजकल लोग इस बात को नहीं मानते हैं तो कितनी समस्याएं हो जाती हैं। और फिर यह सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोप्यश्च स्नेहं अपूजयन् मुदा दधि अक्षता आदि युजुः सदाशिषः। तो जो गोपियां हैं वो दूर से ही भगवान की पूजा करने लगी, जैसे दही से अक्षता से तरह तरह से कोई आरती उतारने लगे, कोई अक्षता फेंकने लगे, उनके ऊपर अर्पण करने लगे, स्वाहा स्वाहा बहुत अच्छा। और तरह तरह से जहां जो ब्राह्मण उपस्थित थे वो भी मंगलमय प्रार्थनाएं बोलने लगे, और ब्राह्मण ब्राह्मण ये दोनों मिलकर आशीर्वाद देने लगे, सत आशीष है। देखिए वैकुंठ लोक में या किसी भी दूसरे स्थान में, अति स्थान में जाइए, सब जगह देखेंगे कि लोग पूछते हैं कि हे भगवान मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, लेकिन केवल वृंदावन में आप देखेंगे कि भक्त भगवान को आशीर्वाद देते हैं, लेते नहीं है। वो भगवान को आशीर्वाद देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका स्नेह इतना तीव्र है और इतना मधुर है कि ब्रजवासी गण कृष्ण को भगवान है ऐसा नहीं जानते। कृष्ण को अपना ही लाडला बच्चा समझते हैं, अपना मित्र समझते हैं, और इस प्रकार से उनका प्रेम और भी मधुर हो जाता है। अगर वो कृष्ण को भगवान समझते तो फिर प्रेम इतना मधुर नहीं होता। तो यहां पर हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सारे ब्रजवासी ने, वर्ष ब्रजवासी ने आशीर्वाद दिया, सत आशीष है। यशोदा रोहिणी नंदो रामस्य बलिनं वरः कृष्णम आलिंगयुजोर आशीषः स्नेह कातराः। फिर माता यशोदा, माता रोहिणी, नंद महाराज और बलराम जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, उन सब ने श्री कृष्ण को आलिंगन किया और भाव विभोर होकर उन्होंने अपने अपने आशीर्वाद श्री कृष्ण को दिए। उधर देवलोकों में भी, हालांकि देवलोक के राजा है इंद्र, लेकिन सभी को समझ में आया कि इंद्र ने बड़ी गलती कर ली है, हमारे राजा ने बहुत बड़ी गलती की। तो वहां देवलोक में भी खुशियां मनाई जा रही थी, वहां देवगण सिद्ध साध्य गंधर्व चारण आदि भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियां गा रहे थे और फूलों की वर्षा बहा रहे थे। उधर इंद्र ने पानी की वर्षा बहाई और यहां अन्य देव जो है फूलों की वर्षा बहा रहे हैं और तरह तरह के वाद्य बजने लगे, जैसे दुंदुभी है, शंख है, इनकी ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। एक उत्सव का वातावरण सारे ब्रह्मांड में बढ़ गया था। फिर शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं, ततो नुरक्ते ही पशुपरे ही परिश्रितो राजन प्रगोष्ठम सबलो प्रदत्थर ही तथा विधान यस्य कृतानि गोपिका गायन्ति ईयुर् मुदिता हृदि स्पृशः। ततः उसके बाद जब सारे ब्रजवासियों ने अभिनंदन किया, श्री कृष्ण का आलिंगन किया, अपने अपने हृदय की प्रेम जो है वो व्यक्त किया, फिर क्या हुआ? अनुरक्तै हि पशुपैः परिश्रितो, घिरे गए परिश्रितो, किन से घिरे गए? पशुपैः, जो ग्वाल बाल थे, पशुओं का पालन करने वाले, गौ पालन करने वाले, जो अन्य गोपालक थे, उनसे वो घेरे गए। कैसे थे वो? अनुरक्त ही, अनुरक्त मतलब बहुत ही आसक्त थे श्री कृष्ण से, बहुत ज्यादा कृष्ण को प्रेम करते थे, ऐसे गोप बालकों से वो घेरे गए। स्वगोष्ठम सबलो ब्रजधरी, फिर हरि ने इधर उधर समय गंवाए नहीं कि चलो इतना बड़ा काम किया, अभी 7 दिन छुट्टी लेते हैं, बहुत परिश्रम हो गया, डबल ड्यूटी हमारी, ओवर टाइम ड्यूटी लग गई, अब 7 दिन अब आराम करेंगे नहीं, सीधे कहां गए ब्रजन? स्वगोष्ठम, फिर से अपने अपने गांवों को लेकर अपने कहां से गए, गांवों को चराने के लिए गायों को इधर उधर लेके गए, सीधे अपने लीला में फिर से शुरू कर दिए। मतलब भगवान को गोवर्धन पर्वत धारण करने में आदि कोई कठिनाई नहीं हुई, और जैसे पर्वत नीचे रख दिया फिर से वही लीलाएं, गोचारण लीलाएं भगवान की शुरू हो गई। उधर गोपियां क्या कर रही थी? तथा विधानि अस्य कृतानि गोपिका गायन किया, इस प्रकार की लीलाओं को देखकर तथा विधानि कृतानि कि भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार की सुंदर लीलाएं की हैं, जैसे गोवर्धन को धारण करना, इसके बारे में तो गोपी अंगान कर रही थी, गायन्त्य, कैसे कर रही थी? ईयुर मुदिता हृदि स्पृशः, बिल्कुल मुदित अवस्था में, आनंदित अवस्था में श्री कृष्ण की गाथाएं, श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं के गीत, जो गीत हैं वो गाए जा रहे थे। यही ब्रजवासियों का आनंद है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करना। और ये हम सबके लिए भी एक उपदेश है कि हमें भी अगर जीवन में सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए, तो वो टेलीविजन से नहीं मिलेगा, वो होटल में नहीं मिलेगा, वो इधर उधर भटकने में या इधर कोई जाने में उधर पार्टी में जाने में नहीं मिलेगा, हमें केवल भगवान श्री कृष्ण के सुंदर गाथाओं का श्रवण करने में मिलेगा। तो भक्तों के बीच में आकर जिस तरह हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं भगवान कृष्ण के मंदिर में, और हम लोग श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, तो ऐसे कार्यों से हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी, और धीरे धीरे से हमारे हृदय के अंदर संसार को भोग करने की जो प्रवृत्ति है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो फिर वृंदावन में सब कुछ जैसे पहले था पूर्ववत वैसे ही हो गया, सभी लोग अपने अपने काम में लग गए, क्योंकि 7 दिन तो सबको छुट्टी मिली थी, सभी लोग यहीं बैठे थे, अभी अपने अपने कामों में लग गए सब लोग। गोपियां अपने अपने घर में जाके घर की सफाई करना, वहां रसोई घर में रसोई करना, दूध दही का मंथन करना, उधर गोपगण अपने गांवों को लेकर चराने गए, ग्वाल बाल भी छोटे गांवों को लेकर चले गए, तो ऐसे कार्य होता गया। उधर हालांकि गोपों ने अपने कार्य चालू किए थे, फिर भी उनका मन जो है वो कुछ अस्थिर सा था। क्यों अस्थिर था, और इसको बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी एक पूरा अध्याय लेते हैं। तो इस पूर्व 25वें अध्याय को समाप्त करके अब सुखदेव गोस्वामी इस 26वें अध्याय की शुरुआत करते हैं, जिसमें कि वो बहुत सुंदर बात बताने वाले हैं कि ब्रजवासियों को आश्चर्य क्यों हुआ, और इस अध्याय का शीर्षक है अद्भुत कृष्ण। कृष्ण कितने अद्भुत हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ब्रजवासियों की मन की क्या स्थिति थी इसका वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर श्लोक लिखा हुआ है, तो इस श्लोक का उच्चारण हम सब मिलकर करते हैं। श्री शुक उवाच एवं विधान कर्माणि गोपा कृष्णस्य वीक्षते अतद्वीर्यविदः प्रोचुः समभ्येत्य सुविस्मिताः। श्रीशुक उवाच एवं विधानि कर्माणि गोपाः कृष्णस्य वीक्षते अतद्वीर्यविदः प्रोचुः समभ्येत्य सुविस्मिताः। आप में से कोई बोलेंगे एवं विधानि कर्माणि
श्रीशुक उवाच
एवं विधानि कर्माणि
गोपा कृष्णस्य वीक्षते
अतद्वीर्यविदः प्रोचुः
समभ्येत्य सुविस्मिताः।
श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद इस श्लोक का। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब गोपों ने गोवर्धन पर्वत उठाने जैसे कृष्ण के कार्यों को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ,
वे उनकी दिव्य शक्ति को न समझ पाने के कारण नंद महाराज के पास गए और इस प्रकार बोले, अतत वीर्य विग्रह, भगवान के वीर्य, भगवान के अचिंत्य शक्ति, भगवान के ऐश्वर्यशाली योग शक्ति का प्रदर्शन, अद्भुत योग शक्ति का प्रदर्शन को ब्रजवासी समझ नहीं पाए। 7 साल का बच्चा ऐसे से कैसे कर सकता है? वैसे जब श्री कृष्ण गोवर्धन को उठाए हुए थे उस समय गोपों को कोई विचार नहीं हुआ, वो तो बड़े आनंद से खड़े थे गोवर्धन के नीचे, श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन कर रहे थे। लेकिन 7 दिन जब बीत गए, सभी लोग अपने अपने घर में चले आए, तब विश्लेषण करना शुरू किया, अरे पिछले 7 दिनों में क्या हुआ, अरे श्री कृष्ण ने धारण किया गोवर्धन पर्वत, ये कैसे संभव है? ये तो हमारा बच्चे जैसा है, एक छोटे से बच्चे में गोवर्धन को धारण किया। फिर आपस में चर्चा होने लगी, हर एक को अपने अपने मन में सोचने लगा, क्या हुआ, क्या ये ऐसे कैसे हो गया, एक छोटे बच्चे ने पर्वत को कैसे धारण किया। फिर घर जाके मन में ये सारी समस्या होने लगी, इसका विश्लेषण करने लगे मन ही मन में। उधर थोड़े लोग मिले और आपस में चर्चा करने लगे, अरे क्या लगता है तुम्हें, ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कैसे हो गया, ये बच्चा है कृष्ण, हमारा कृष्ण, उसने ऐसे कैसे किया। और पूर्व में कृष्ण बहुत सारे ऐसे अद्भुत कार्य किए थे, अनेक असुरों का वध किया था। तो सारे ब्रजवासियों भी सोचने लगे, हो सकता है कि इस बच्चे ने ऐसे अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया है क्योंकि ब्राह्मणों की कृपा आई होगी इसके ऊपर, या तो हो सकता है कि ये नंद महाराज ने कोई पुण्य कार्य किए होंगे पूर्व जन्मों में कि ऐसे एक अद्भुत शक्ति वाला बच्चा मिला है उसको, या तो फिर हो सकता है कि भगवान नारायण ने ऐसी कृपा की होगी इस बच्चे के ऊपर, ऐसी विशेष शक्ति प्रदान की इस बच्चे को। लेकिन फिर भी ऐसे तर्क तो झूठे हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है कि ठीक है भगवान भी को शक्ति प्रदान करे, लेकिन 7 साल का बच्चा है पर्वत उठा सकेगा, इसका मतलब है कि ये भगवान से शक्ति प्राप्त नहीं की है, इसलिए तो स्वयं भगवान होगा, इसलिए तो ऐसे कर पाए। लेकिन फिर भी अगर ये भगवान होता ये बच्चा, तो बच्चे जैसे कार्य क्यों करता। हम देखते हैं कि कभी कभी वो बछड़ों को या गौओं को चराने ले जाता है, कभी कभी हंसता है, कभी कभी रोता है, कभी कभी हम आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं उसका, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, कभी उसे जो चीज चाहिए नहीं मिलती है तो उदास होकर चुप बैठ जाता है, जैसे साधारण बच्चे करते हैं वैसे ही वो करता है। और भी जब छोटा था तो हमारे घरों में आके दूध दही मक्खन चोरी करता था, झूठ बोलता था, ये थोड़े भगवान के कार्य होते हैं। तो जो कार्य इसने किए हैं जैसे गोवर्धन पर्वत को धारण करना, इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान ही होना चाहिए, दूसरा कोई उपाय ही नहीं, दूसरा कोई उत्तर ही नहीं है इसके लिए। परंतु दूसरी ओर देखेंगे तो ये साधारण बच्चे की तरह चोरी करता है, झूठ बोलता है, नटखट बालक है, तो ये एक प्रकार का भयंकर विरोधाभास है, कुछ हम समझ नहीं पा रहे, दोनों चीजों का समन्वय हम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या सत्य है, क्या समझना चाहिए हमें कृष्ण को, ये कृष्ण है कौन? तो सब ब्रजवासी आपस में मिलकर चर्चा कर रहे हैं, कोई निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो क्या सोचा उन्होंने, चलो नंद बाबा है वो बहुत बुद्धिमान है, वो हमारे प्रमुख है और वैसे भी कृष्ण के पिता है, तो चले जाके नंद महाराज से पूछते हैं कि ये कृष्ण है कौन और ये क्या चल रहा है वृंदावन में, चलो जाते हैं। इस प्रकार से समभेद्य सुविस्मित, फिर नंद महाराज के पास आए बहुत ही विस्मित अवस्था में, सुविस्मिता, सुविस्मित मतलब अति विस्मित होकर, बहुत ही ज्यादा ऐसे आश्चर्यचकित हो गए सारे ब्रजवासी गण अब नंद महाराज के पास में आए। तो नंद महाराज के पास आके नंद महाराज ने देखा सारे ब्रजवासी घर में आए, क्या बात है, चलो आओ आओ बैठो बैठो सब। तो वहां एक सभा हुई नंद महाराज के घर में, सारे गोपगण अपने अपने छड़ी लाठी पगड़ी सब धारण करके आए। नंद बाबा हमें कुछ पूछना है आपसे। हाँ आओ 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 भाइयों बैठो बैठो, क्या पूछना है। बालकस्य यत एतानि कर्माणि अति अद्भुतानि वै कथम अर्हति असौ जन्म ग्रामेषु आत्मजुगुप्सितम्। बालकस्य यत एतानि कर्माणि, जबकि ये बच्चा इस बालक ने बालकस्य यत एतानि कर्माणि इतने सारे अद्भुत कार्य किए हैं, अति अद्भुतानि वै ऐसे कार्य इस बच्चे ने किए हैं जो कि अति अद्भुत हैं। कथम अर्हति असौ जन्म ग्रामेषु आत्मजुगुप्सितान्। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ कि श्री कृष्ण जैसे विशेष व्यक्ति जिसने ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं, हम जैसे साधारण निम्न श्रेणी के गांव वालों के बीच में जन्म लिया है, ये कैसे हुआ, कृष्ण हमारे बीच में कैसे जन्म ले, ये तो कोई साधारण बच्चा नहीं है। अगर भी अगर ये भगवान है तो भगवान को अपनी इच्छा से जन्म लेंगे, और कहां जन्म लेंगे, कोई बहुत अच्छे स्थान में जन्म लेंगे। श्री रामचंद्र ने जन्म कहां लिया था, एक राज परिवार में लिया था, राजा के पुत्र बने थे। लेकिन यहां वो तो हम छोटे गांव वालों के बीच में आके जन्म लिए हैं, तो भगवान कैसे हो सकते हैं। दूसरी ओर अगर कोई बहुत ही विशेष व्यक्ति है जिनको अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई है पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर, तो ऐसे जब पुण्यवान व्यक्ति होता है उसे बहुत ऊंचा जन्म मिलता है, तो हमारे गांव में इसका जन्म कैसे हुआ। तो इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं हे नंद महाराज। फिर आगे कहने लगे गोपगण, यह सप्तहायनो बाल करेणै केन दीनया कथम बिभ्रत गिरीवरम पुष्करम गजराज इव। यह जिसने सप्तहायन बाल है, ये सात वर्षों का जो बालक है, करेण एकेन लीलया केवल एक हाथ से लीलया बड़े आसानी से कथम बिभ्रत किस तरह से धारण किया गिरीवरम सबसे श्रेष्ठ पर्वत को, जिस प्रकार से पुष्करम गजराड इव जैसे एक बलशाली हाथी एक पुष्कर या एक कमल पुष्प को उखाड़ देता है कुंड से या सरोवर से, उतने आसानी से इस सात साल के बालक ने इस विशाल पर्वत को धारण किया, ये कैसे संभव है। हम ये आपको पूछने आए हैं नंद महाराज, क्योंकि ये आपका पुत्र है, तो कुछ बताओ हमें। तो फिर आगे कहने लगे, अब इसके बाद केवल गोवर्धन की बात नहीं है, अब वो अपने तर्क को थोड़ी ताकत देने के लिए श्री कृष्ण ने जो पूर्व अद्भुत कार्य किए थे उनका भी संक्षिप्त रूप में वर्णन करने जा रहे हैं, कहने के लिए कि देखो केवल गोवर्धन की बात नहीं है, और भी इतने सारे कार्य किए कृष्ण ने जिनको देखकर हम तो बड़े विस्मित हो गए हैं। तो कौन से कार्य किए, बचपन से जो प्रमुख लीलाएं की थी भगवान ने असुरों के वध के संदर्भ में, उनका उल्लेख यहां पर ब्रजवासी कर रहे हैं। तो केन आमीलित अक्षेन पूतनाया महोजस पीत स्तन सह प्राणे काले नेव वयस्तनो। तोकेन तोक, तोक मतलब बच्चा, आमीलित अक्षेना आमीलित मतलब जिनके जिनकी आंखें हैं, इतना छोटा बच्चा था उनकी आंखें अच्छी तरह से खुलती नहीं थी, इतना छोटा बच्चा एक दो महीने का हुआ होगा उसके। तो ऐसे छोटा बच्चा जब कृष्ण था तो पूतना या बहो जैसा कि पूतना जो बहुत शक्तिशाली थी, पीत स्थन सह प्राणी काले नेव वयोस्थन हो। तो इस छोटे से बालक ने जो पर आंखों को भी खोल नहीं सकता था ठीक से, उसने ऐसे भीषण राक्षसी पूतना का स्तनपान किया और दूध के साथ साथ पूतना के प्राण ही खींच लिए और उसका वध कर दिया। जिस प्रकार से कालीन वय तनो हो, जिस प्रकार से काल हमारे शरीर से हमारी युग अवस्था को छीन लेता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने जो कि छोटा सा बच्चा था उस समय पूतना के शरीर से प्राण वायु खींच लिया। कैसे संभव है? कृष्ण तो उस समय केवल एक या दो महीने के थे, बस इतने छोटे बालक। कहा जाता है कि जब पूतना आई तो श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। वैसे बहुत कम खोल सकते थे, आग नीली तक अक्षेना, लेकिन जब पूतना आई तो कहा जाता है कि कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। पूतना तो महान बड़ी राक्षसी थी, कंस ने भेजा था पूतना को, और कृष्ण ने क्यों आंखें बंद कर ली इसके बारे में कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि कृष्ण ने देखा कि ये जो महिला है ये राक्षसी है, हालांकि एक सुंदर युवती के रूप धातु धारण करके आई है, लेकिन ये बहुत बड़ी अत्याचारी है। सब जगह जाके बच्चों को मार रही है, बच्चों की हत्या भी है, क्योंकि कंस ने आदेश दिया था पूतना को जहां भी अभी पिछले एक महीने में जन्म हुए बच्चे हैं उन सबको मार डालो, क्योंकि इनमें से कौन कृष्ण होगा ये नहीं मालूम, इसलिए सभी को मार डालो। तो पूतना सब जगह गई थी, जगह जगह जाके घर घर में जाके बच्चों को मारती थी, जो भी एक महीने के नीचे बच्चा है। तो कृष्ण ने देखा कि इतनी बड़ी हत्यारी यहां आई है, बच्चों की हत्यारी, तो कृष्ण ने सोचा कि ऐसे राक्षसी को देखना भी ठीक नहीं है, तो आंखें बंद कर दी। और एक कारण भी ये बताया जाता है कि कोई आचार्य कहते हैं कि हो सकता है पूतना को कोई विशेष संदेश मिल रहा हो और पूतना को वो प्रोत्साहन देना चाह रहे थे कि ठीक है चिंता नहीं करो। और एक कारण आचार्य ने बताया है कि श्री कृष्ण ने सोचा ये तो राक्षसी है, इसका वध मुझे करना है, लेकिन ये स्त्री है, स्त्री का या स्त्री की हत्या करना ठीक नहीं है। शास्त्र में बताया जाता है कि स्त्रियों को, बच्चों को, वृद्धों को, ब्राह्मणों को कभी भी मारना नहीं चाहिए, कभी उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, कभी हत्या उनके नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब मुझे इस राक्षसी को मार डालना है और ये स्त्री है, तो श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, तो आंखें बंद कर ली। और भी ऐसे एक कारण है कि पूतना एक धात्री के रूप में आई थी, श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई थी, इसलिए कृष्ण ने सोचा कि मां के रूप में आई है और मुझे मां के रूप में आने वाली स्त्री का वध करना पड़ रहा है, यह भी अच्छी बात नहीं है। वास्तव में पूतना थी कौन? जब भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व वामन देव का अवतार लिया था, एक बटु ब्रह्मचारी का रूप धारण किया था, तो उस समय बलि महाराज के दरबार में बलि महाराज की छोटी बहन रत्नमाला थी, और रत्नमाला ने जब इस बहुत ही सुंदर बच्चे को देखा तो उनका मन बहुत आकर्षित हो गया, इतना सुंदर बच्चा कि काश मेरा भी ऐसा बच्चा होता, मैं इसकी मां बनना चाहती हूं। तो ममत्व की भावना, ममता की भावना जो है वो जागृत हो गई रत्नमाला के हृदय में। लेकिन आगे चल के जब वामन देव ने तीन कदम लेकर बलि महाराज का सब कुछ हरण कर लिया, उन्होंने एक विराट रूप धारण किया, तब रत्नमाला की जो भावना है वो बदल गई। अरे इसने तो, इस बच्चे ने तो धोखा दे दिया, मैंने सबसे सोचा ये मासूम बच्चा है, मैं इसकी मां बनना चाहती हूँ, लेकिन ये तो ऐसे धोखेबाज निकला, तो मैं इसको विष पिला के मार डालना चाहती हूँ, इसने हमारा सब कुछ छीन लिया, मेरे भाई को बिल्कुल भिखारी बना दिया इस बच्चे ने। तो अब रत्नमाला के हृदय में दोनों इच्छाएं थी, तो इसके दोनों इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक अवसर दिया अगले जन्म में। यही रक्तमाला आगे चल के कृष्ण लीला में पूतना बन गई। और पूतना अपने राक्षसी होने के नाते उसके पास तो योग शक्ति थी जिससे कि वो अपने रूप को बदल सकती थी, काम रूप ही। और इसलिए राक्षसी का भयंकर रूप को त्याग कर एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और वो आई। इतनी सुंदर महिला जब घर में आई तो यशोदा माता, रोहिणी देवी, अन्य सब ब्रजवासी थे, गोपियां थी वहां पर, उन्होंने संशय ही नहीं किया कि इसके मन में कोई बुरे विचार होने वाले हैं। साधारण एक महिला की तरह अंदर आई। देखिए, आतंकवाद कोई नई समस्या नहीं है। आतंकवाद भी कैसे होते हैं, हमारे कहीं दिखते हैं, आते हैं, पहचानने में नहीं लगता कि ये कौन है, ये आतंकवाद है, बम विस्फोट करके जाएगा, क्या करेगा, हमारे ऐसे ही दिखते हैं। उसी प्रकार से पूतना भी प्रथम आतंकवादी है। वो वेश बदल के आई, किसी को पता ही नहीं चला, कोई संशय नहीं हुआ यशोदा माता को, अन्यों को, और बड़े आनंद से उन्होंने स्वागत किया। आओ वो आए कि मैं आपके बच्चे को देखना चाहती हूँ। हाँ जल्दी आओ, जो अंदर अंदर है। तो किसी ने रोका नहीं, सीधे अंदर चली गई पूतना। और अंदर जाके सीधे कृष्ण को अपने गोदी में लिया, दूध पिलाना शुरू कर दिया। अपने स्तनों में पूतना ने एक विष का लेप लगाया हुआ था। श्री कृष्ण ने देखा कि अरे रे रे, अभी मुझे वध करना होगा। तो श्री कृष्ण ने दूध का पान तो किया पूतना से, और इस प्रकार से जो रत्नमाला की पहली इच्छा थी उसको पूर्ण कर दिया। और दूसरी इच्छा थी कि रत्नमाला श्री कृष्ण को मारने की इच्छा रख रही थी, मार तो नहीं सकती थी लेकिन प्रयास हो गया, तो प्रयास करने के लिए भगवान ने अवसर दिया। तो भगवान को विष क्या मार सकता है। तो भगवान ने स्तर पार करके पूतना के शरीर से प्राण खींच निकाला। इतना दर्द हुआ कि पूतना अपने युवती का रूप धारण बनाए नहीं रख पाई। चीखते चीखते बच्चा छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो कहने लगी, और उस बच्चे को लेकर बाहर निकली मैदान में। वहां पर भयंकर अपने पूर्व जो मूल राक्षसी का रूप था वो प्रकट हुआ, और आगे मैदान में जाकर पूतना वहां पर गिर पड़ी। और पूतना का शरीर 8 मील लंबा था। जब पूतना गिर पड़ी तो धार से बहुत बड़ी आवाज आई। सारे ब्रजवासी का इधर उधर देखे, क्या आवाज है, क्या हुआ, तूफान वो फिर से इधर आएगा, क्या हुआ। ये तो पहले की बात थी, फिर इधर नहीं। तो सोचने की क्या हुआ क्या हुआ, कृष्ण के कमरे में गए, कृष्ण थे नहीं। अरे वो महिला कहाँ गई, युवती कहाँ गई। तो ढूंढते ढूंढते इधर गए, बाहर देखा तो विशाल शरीर पड़ा है राक्षसी का, और वहां पर छोटे से कृष्ण पूतना के स्तनों के ऊपर हैं। तो सारे गोपियां वो ऊपर चढ़े और श्री कृष्ण को जल्दी लेकर आए नीचे। और वहां पर फिर बाद में पूतना के शरीर को जलाया सारे गोपों ने, क्योंकि सर भयानक शरीर को सबके सामने रखना नहीं चाहते, तो जला डाला। लेकिन पूतना का शरीर जो है पूरी तरह से शुद्ध हो गया था। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्पर्श किया था पूतना का और पूतना का दूध पिया था, इसलिए पूतना का शरीर अभी पूरी तरह से आध्यात्मिक, पूरी तरह से शुद्ध हो गया था। इसीलिए जब पूतना का शरीर जलाया गया तो सब जगह एक खुशबू आई, सुगंध, मीलों मील दूर तक ऐसे सुगंध आ रहा था, किसी को पता नहीं चली सुगंध कहां से आ रहा है, पूतना के शरीर को जलाने से आ रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपालु होते हैं, सभी उनके बच्चे हैं, चाहे वो देव हों, असुर हों, भक्त हों, नास्तिक हों, सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, सबको प्रेम करने के नाते वो सबका भला चाहते हैं। जब वो असुरों का वध करते हैं जैसे कि उन्होंने पूतना का किया, तब उन असुरों का भी भला करते हैं। ऐसे शास्त्र में बताया जाता है कि जब भगवान किसी असुर का वध करते हैं तो उस असुर को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा देते हैं, उनको मुक्ति दे देते हैं। देखिए ये भगवान की कृपा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में उद्धव भगवान श्री कृष्ण के बारे में विदुर जी से कहते हैं, जब विदुर जी ने उनको कृष्ण के बारे में पूछा तो उद्धव ने कहा, अहो बतिस्मयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं दात्र्युचितं ततोऽयं कम्बां दयालुं शरणं व्रजेम। उद्धव ने कहा कि हे विदुर, उस श्री कृष्ण के बारे में क्या कहना जो इतने दयालु हैं कि उन्होंने पूतना जैसे राक्षसी को भी मुक्ति दिलाकर एक माँ का स्थान अपने धाम गोलोक वृंदावन में दिया। अहो, अरे देखो तो, बकी, बकी मतलब पूतना, बक बक नाम का असुर था जिसका जिसका उल्लेख आगे चल के करेंगे, बकासुर उसकी बहन बकी पूतना, यम स्तन कालकूट अपने स्तनों में काल कलकूट नाम का विष लेपन करके आए थे। जिघांसया अपि अति असाधवी, वो असाधवी थी, साधवी नहीं थी, उसके मन में दुष्ट विचार था। जिघांसया वो कृष्ण को मारना चाहती थी, लेकिन फिर भी क्या गति मिली पूतना को, लेवे गति धात्री, एक धात्री की गति, एक माँ का स्थान मिला पूतना को भगवान के धाम में गोलोक वृंदावन। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा, तो ऐसे और दयालु प्रभु कहाँ मिलेंगे, इसलिए मैं ऐसे दयालु श्री कृष्ण के शरण में जाता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने बचपन से ही ये साबित करके दिखाया कि वो भगवान है। भगवान चाहे बच्चे हो 2 महीने के, या 5 साल के बालक हो, या 15 वर्ष के तरुण हो, या कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में खड़े हुए 125 वर्ष वाले मनुष्य हो, दिखने वाले वो भगवान ही रहते हैं। जब एक बच्चा होता है साधारणतः हम देखते हैं उसकी बुद्धि और शारीरिक बल बहुत कम होती है, बच्चा कुछ नहीं कर सकता, निस्सहाय होता है बच्चा, छोटा बच्चा, हर चीज पे वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है और समझ भी नहीं सकता कि क्या क्या है। और जब व्यक्ति बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो भी वैसे ही हालत होती है, जैसे जैसे बचपन से आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे बल बुद्धि आदि बढ़ती जाती है, परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसे वो नकल कर रहे हैं एक साधारण बच्चे का, जैसे बच्चे व्यवहार करते हैं, रोते हैं, माखन चोरी करते हैं इत्यादि भगवान कर रहे हैं, परंतु उनकी शक्ति में, उनकी बुद्धि में, उनके ऐश्वर्य में बिल्कुल कोई घटन नहीं हुआ। तो ये है भगवान। भगवान वो है जिनकी शक्ति, जिनके ऐश्वर्य सदैव विद्यमान रहता है, कोई भी व्यक्ति उनके शक्ति को, उनके ऐश्वर्य को नष्ट नहीं कर सकता किसी भी हालत में। लेकिन यहां इस दुनिया में ऐसा नहीं है, काल हमारे सब कुछ को नष्ट कर देगा, हमारे पास जितना भी ऐश्वर्य है, शक्ति है, जो भी कुछ है, काल के द्वारा नष्ट हो जाएगा। परंतु भगवान काल से परे हैं, काल ही उनकी शक्ति है, इसलिए बचपन की अवस्था, बाल्य अवस्था में ही भगवान ने ऐसे अद्भुत कार्य किए। इसका मतलब है कि भगवान ये एक पद नहीं है जो कि चुनाव के द्वारा, तपस्या के द्वारा, विद्या के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, नहीं, कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, ये संभव नहीं है। केवल भगवान ही भगवान है, वो थे और रहेंगे, हम केवल भगवान के दास हैं और इस बात को समझ कर हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, इसमें हमारी भलाई है। जब इस बात को हम भूल जाते हैं और इस संसार के ऊपर प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न करते हैं तो हम भी पूतना के समान हो जाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्री प्रभुपाद जी के गुरुदेव हैं वो कहते हैं कि पूतना वो ऐसे झूठे गुरु के प्रतीक हैं जो कि अपसिद्धांतों का प्रचार करते हैं। अपसिद्धांत मतलब जो गलत बात है, जो गलत दर्शन है, जो गलत तत्व है। जैसे कि ऐसे कई लोग हैं जो संसार में बोलते हैं कि हम सब भगवान हैं, भगवान केवल निराकार हैं, भगवान है ही नहीं, भगवान का रूप नहीं है, भगवान के गुण नहीं है। ऐसे सब गलत बातों का प्रचार करने वाले कई लोग हैं तो वो सब पूतना के समान हैं, ऐसा श्री भक्ति सिद्धांत कहते हैं। तो इनका वध कृष्ण भक्ति के सिद्धांत से, गीता और भागवत के सिद्धांत से हमें करना चाहिए। वध मतलब उस अपसिद्धांत का वध, व्यक्तियों का वध नहीं। ऐसे गलत ज्ञान को नाश हमें करना चाहिए और नष्ट करना चाहिए इस ज्ञान से। इसलिए हम सबको गीता और भागवत अच्छी तरह से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए भक्तों के संग में। तो फिर पूतना रूपी ये जो गलत गुरु हैं फिर यहां समाज में और समस्या खड़ा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से आगे चलते चलते ब्रजवासियों ने एक एक करके अन्य ऐसे अद्भुत घटनाओं का वर्णन किया और एक के बाद एक वर्णन करते करते फिर अपने प्रश्न पे आए। परंतु अब समय होते जा रहा है, इसलिए इस समय हम यहाँ पर कथा रोकेंगे। इसी बात को, इसी कथा को हम कल सुबह जारी रखेंगे। हाँ, कल सुबह 8 बजे मंदिर में यहाँ कथा होगी, आप सब आ सकते हैं। कल जन्माष्टमी का दिवस है, हम यहाँ मंदिर में जन्माष्टमी कल मना रहे हैं। हालांकि आज क्योंकि बाहर कई लोग जन्माष्टमी मनाते हैं इसलिए यहाँ अनेक लोग आएंगे और आ भी रहे हैं दर्शन के लिए। आज दर्शन 12 बजे रात तक खुले रहेंगे, तो कल सुबह 8 बजे ये कथा जारी रखेंगे और उसके बाद शाम को तो कार्यक्रम बड़ा है ही। तो अब थोड़ा सा कीर्तन और भजन करेंगे, उसके पहले थोड़ी सूचनाएं हैं। इसके पहले थोड़ी सूचनाएं हैं और फिर हम सूचनाओं के बाद